आप श्री राजी महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म उत्तम प्रशक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्रहन्नाथ जी महाराज संसार के अंदर आज दिन तक जो दुनिया भटकी हुई थी और आज भी भटकी हुई है, कोई इतना बेवरा, इतनी डिटेल, इतना भी रेफरेंस नहीं दे सका, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ऋषि हो, मुनि हो, गुरुजन हो, वेद हो, पुराण हो, भागवत और गीता क्यों ना, कि आत्मा कहते किसको है। आज किसी भी बशर से आप कहो तेरे अंदर आत्मा नहीं है, क्या कहे, वाह मेरे अंदर आत्मा ही को नहीं है, तो मैं जिंदा क्यों भी हूं, एकदम ही बगैर सोचे समझे। और ग्रंथ पुकार पुकार के कहते हैं कि जिसको भाई आत्मा कहते हैं वो जन्म और मरण से रहे थे। फिर यदि जन्म और मरण से रहे थे, कर्मों से परे है, तो ये सारा संसार तो जन्म और मरण के अंदर है और कर्मों के अधीन। रामायण को झूठी तो नहीं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस कीन तस फल चर। और गीता को उठाओ तो कर्मों के बिना कुछ ज्ञान ही 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान ने दिया ही नहीं, कि अर्जुन कर्म ही सबसे बड़ा चीज है, तू कर्म कर, कर्म भी कैसा कर कि जिसका कुछ फल मिले, ये भी कभी सोचना। और उठा करके वेदों को देखें तो संख्य दर्शन के अंदर तो कर्मों को ही परमात्मा का दर्जा दे रखा। तो सुंदरता जी, फिर यदि आत्मा सबके अंदर थी तो कर्मों से परे हट करके पार ब्रह्म का ज्ञान किसी को प्राप्त हुआ क्यों नहीं। सब जगह आज जहां भी सम्मेलन होता है धर्मों का, बड़े बड़े आचार्य जन, गुरु जन, हर धर्मों के आचार्य हैं, तो क्या होता है, विश्व धर्म सम्मेलन, अध्यात्मवाद, सुपरिचलिज्म, रूहानियत का ज्ञान, और वो रूह क्या है, आत्मा है क्या, सोल कहते किसको है, तारतम के बिना कोई खोल के बता तो देता। फिर पढ़ते हैं दुनिया ब्रह्म सत्य है, परमात्मा अजन्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, और फिर उसको कहते हैं कण कण के अंदर। इतना अंधकार, अज्ञानता का ये पिटारा ये संसार है। इस अज्ञानता को हटाकर और जागृत बुद्ध का ज्ञान एक सूर्य रूप से लाने वाली शक्ति पार ब्रह्म की ही होगी। लेकिन जब पार ब्रह्म भी इस दुनिया में आएंगे तो उनको भी एक मनुष्य के अंदर ही आना होगा जो यहाँ की प्रकृति का नियम है। अब उस तन के अंदर वह बुद्ध निष्कलन करतार आपक्षाती पार ब्रह्म की शक्ति, जिनको हम प्राणनाथ कहा जयकारा बोल करके कहते, प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं, प्राणनाथ हम किसी व्यक्ति को नहीं बोलते, प्राणनाथ निजमूल पति पार ब्रह्म सच्चिदानंद अनादि अक्षातीत जो है उसको कहा गया है, वो प्राणनाथ। अब वह अपनी आत्माओं के लिए जो परम धाम से कहा था कि तुम्हारे जुदा जुदा देश होंगे, जुदा जुदा गांव होगा, जुदा जुदा ठाव होंगे, जुदे जुदे प्रांत होंगे, और जुदा जुदा परिवार होंगे, जुदा जुदा तुम्हारे रस्मों रिवाज होंगे, और जुदा जुदा तुम्हारे धर्म हो जाएंगे, और जुदा जुदा ही तुम्हारे वहां पर खुदा हो जाएंगे। ब्रह्म सृष्टि आत्मा ने कहा था राजी महाराज, ये तो कभी हो नहीं सकेगा कि हम आपको छोड़ करके किसी और खुदा की भी पूजा करेंगे, कभी नहीं हो सकता, हमें आजमा करके तो देखो। तो उतरते अरवाहों को हक्के कया अलस्तो बेरब, क्या मतलब है इसका, ये उर्दू भाषा अरबी अवश्य है, अलस्तो बेरब कुम, मेरे बिना किसी और को अपना मालिक खुदा खामंद बनाना नहीं। वले कहा रुवनुओं ने वायदा किया राजी महाराज, ये तो कभी हम होने ही नहीं देंगे। अब आजमाओ, अब तो तारतम मिल गया, आगे तो अज्ञानता थी ब्रिज और रास के अंदर, जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं था, सुंदर साहब, आज हम अक्षातीत राज्य में रह के अंध होने के बाद भी केवल समाज, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को कायम रखना चाहते हैं और राज्य को चौराहे पर बेच रहे हैं। अक्षातीत की वाणी का क्या खंडन हम लोग कर रहे हैं, सोचिए। अब वो एक तन के अंदर ये माया मिथ्या नट ब्रह्मांड है। माया मिथ्या पहले ही प्रकरण के भीतर तार के अंदर आपने ये सुना, माया का मिथ्या, और मिथ्या माया में कैसा नाटक जैसे करता है। किसी भी आप सांग तमाशे में जाओ, मानो मैं हूं, एक रामलीला हो रही, रामलीला हो रही, मैं जाके उसको कहता हूं मैनेजर को, भाई मैनेजर साहब मुझे भी नाटक करना है, सांग लेना है, हिस्सा दो मुझे। और वो कहते भाई तुम्हारा नाम, मेरा नाम तो भाई जगदीश है, जगदीश के नाम से मुझे कोई रामायण में हिस्सा दे दो। तो क्या कहेगा, सारी रामायण में कहीं जगदीश के नाम का पाठ कभी आपने सुना? कहेगा भाई तुम्हारे शरीर का असल नाम जगदीश होगा, ये रामायण है, रामायण के अंदर तो राम बनना पड़ेगा या लक्ष्मण बनना पड़ेगा, भरत शत्रुघ्न बनना पड़ेगा, दशरथ बनना पड़ेगा, कुंभकर्ण बनना पड़ेगा, रावण बनना पड़ेगा, सुग्रीव बनना पड़ेगा, बाली बनना पड़ेगा। बोलो क्या बन सकते हो? अच्छा भाई बाली बना दे तो वहां मुझे भेष बदलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, राज्य महाराज अक्षातीत ये नाटक माया में आए हैं, अब उन्होंने पार्ट प्ले करना है आशिकी का। रूहों ने कहा धनी धनी प्रेम हमारा बड़ा है, उन्होंने दो बार इनको टीम को, एक तरफ 12,000 खिलाड़ी हैं और एक तरफ बेचारा प्राणनाथ एक है। ब्रिज और रास में रूहों को कहा अच्छा भाई तुम बैठ चलो, हाथ में मैं गेंद फेंकता हूं, लो क्लीन बोर्ड उड़ते चले गए। उन्होंने कहा नहीं अच्छा अब बैट मेरे हाथ में दे दो, तुम ओवर फेंको। एक एक में 6-6 रन लिए जा रहे, कोई कैच नहीं कर रहा, कोई उनके गेंद को नहीं समझ रहा, कोई उनको बात नहीं सुन रहा, अपने ही रोने रो रहे कि बैट्समैन ने ऐसा हट्टा मारा मेरा गिट्टा तोड़ के रहता अंदर। बोले खेल दे खिलाड़ी ने क्यों गिट्टे तोड़ा, यहाँ गिट्टे टूटने हैं, यहाँ मार पड़नी है, क्योंकि संसार किसका रूप है, दुख ही। फिर खुद देखो कितने संकट है करके बताए। और रोने वालों जरा होश तो करो, तुम क्या रो के दिखाओगे, रोने का भी सलीका सीखना है। प्राणनाथ जी कहते हो मेरे से देखो वास्ते सुंदर साहब के, समाज के लिए नहीं, पिता की शान के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, एक सुंदर साहब बिहारी जी महाराज जो अभी कुछ तारतम ज्ञान भी नहीं जानता, गद्दी पर गुरु पुत्र बैठा है, कहता है पत्नी छोड़ दो, छोड़ी ये भी नहीं सोचा कि जी कल सोच के अपनी रखा है, हमने अपने अपने गद्दियों की, महाराजों की समाधियों को पकड़ रखा है, हमने अपने अपने जो है गुरु की पूजा की हुई है, अक्षातीत की पूजा से हम प्रणामी सुंदर साहब दी दूर, तो दुनिया को क्या ज्ञान दें। जब हमारी भी अभी तक आंखें नहीं खुल रही, रोज पढ़ते हैं सुनते हैं कि सुरत एक ही राखी हो, फिर गद्दियों में और समाधियों में किस लिए खुशी? तो ठीक है कि जिस तन से हमें सब कुछ मिला है हमारे लिए पूजनीय है, हम उनके चरणों में शीश झुकाए, लेकिन पूजा अक्षरातीत एक जो श्री राज्य महाराज है उसकी बिना करना जो है पाप है, वो कुरान भी कहता है, लेकिन ना समझो तो दोष वाणी करते। अब स्वामी जी सबको तारतम दे रहे हैं, अपने शरीर की पूजा करा रहे हैं कि राजीव राय की, उस तन में साक्षात राजीव राय बैठे हैं कि नहीं? तो जब तन में बैठे हैं तो कह सकते हैं भाई मैं अक्षाती युगल स्वरूप इसी तन में हूं, मेरी पूजा करो। कहते हैं ना ये नाटक का ब्रह्मांड, नाटक के अंदर ये तन धारण किया हुआ है, असल स्वरूप बैठा है मूल मिलावे, उसका ध्यान रखना था। क्यों? तन हटेगा तुम लोग फिर धोखे खा जाओगे। तन हटना है, अगर तन ही अखंड कर देते तो 4 साल में तो एक ड्रामा शो पीस बन जाता अक्षातीत के तन का। हम सब सुंदर साथ ने तनों को शुरू दिन से पकड़ा और आज दिन तक उस तन के पुजारी रह जाते हैं जिस तन में राजीव राय लीला करते हैं। लीला उन्होंने बदलनी, जहां जहां उनकी आत्माएं शेष बैठी रहती हैं, तो क्या उनको कौन जाके जगाएगा? कि एक तन 400 साल का बना देते तो दुनिया तो तन की देखना तो रो रो रो, चलो भाई हिंदुस्तान में एक आदमी 400 साल का हो गया, शो ही लगा रह जाता, ड्रामाबाजी यही हो जाती। इसलिए फिर परम धाम में जिन जिन आत्माओं से जो काम लेना उन्होंने निश्चित कर रखा है वो अवश्य होना है, उसको देखने की जरूरत नहीं, वाणी पहचानने की जरूरत है, क्योंकि वाणी क्या है, जागृत बुद्ध का ज्ञान है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुंदर साथ जी बेहद के साथी सुनो, किनको पुकारा, बेहद के संसार के लोगों को, वाणी तो समझो, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना ए जानी, और आगे क्या है, जागृत बुद्ध बिना जाए ना पहचान। और हमने जागृत बुद्ध का इस्तेमाल ही नहीं करना, हमने अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। तो सुंदर साहब जी स्वामी ने कहा फिर अगर ऐसी बात हो 100 साल गिनाओ साथ में, और धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर, आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे। अगर मूल जागृत बुद्ध के बिना अपने श्री राज्य महाराज जो बैठे हैं मूल मिलावा माहे उनकी पहचान नहीं करोगे, सार्थम कुछ नहीं करेगा, माला तुम्हारी कुछ नहीं करेगी, जीव को अखंड सुख दे देगी, आत्म फिर भटकती रहेगी। अब वो ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए अब स्वामी जी जब कबीर पंथ के भी प्रमाण देते हैं, तो वहां ठठे नगर में कुछ लोग ऐसे थे जिनका सत्संग रोज चिंतामणि भट्ट के साथ होता था। तो तुरंत स्वामी जी को कहा, स्वामी जी यहाँ पर एक कबीर पंथ के आचार्य हैं, गादीपति महाराज हैं, और वो सदा बुद्ध निष्कलंक अवतार के आने के प्रमाण दिया करते हैं, उनकी वाणी में ये लिखा हुआ है, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। इसलिए स्वामी जी थोड़ा सा सत्संग करोगे, लगता है कि वो जरूर जो है आपकी वाणी सुन पर के राजी महाराज पर यकीन लाएगा। स्वामी कहते अच्छा चलो एक दो सुंदर साथ मेरे साथ चलो, उनके घर पहुंचा दो, लेकिन वहां परिचय करा देना, फिर तुम पीछे हटके बैठ जाना। अब वो दो सुंदर साथ स्वामी जी को लेकर स्वयं अक्षरातीत चल के जाते हैं। यहाँ किसी आचार्य महाराज गादीपति को कह दो महाराज वहां हम जाएंगे, उनको जरूरत है आ जाए, हम नहीं जाना चाहते, अहंकार बोलता है। ओ सुंदर साथ इतने से नहीं तुम पहचान सकते कि ये अहंकार का बुद्ध है, कि अक्षातीत की वाणी इसके अंदर है। जिसके अंदर अक्षातीत की वाणी होगी वो कदम कदम पर झुकेगा, क्यों, फल लग जाता है ना एक पेड़ को, झुकता है कि नहीं झुकता, और झुके हुए फल को, जिसको फल लगता है ना, दुनिया देख के सहन नहीं करती। कैसे, आम का पेड़ दुशहरी सड़क के किनारे किनारे आपन चल रहे, पक्के पक्के आम देख के कांटों की बाढ़ है, जा तो नहीं सकती, पर कुछ टहनियां बाहर लटक रही, क्या सोचे यार वट्टा चौक मार दो अंब ते हेठा आ जाएंगे, दो ही खा लाएंगे। उठाया एक पत्थर, पत्थर को पेड़ को क्या मारा, बोल तो दो, पर वो क्या कहता है, भाई पत्थर मारने वाले तेरा धन्यवाद, तूने मुझे पत्थर तो मारा है, ले दो जने हो ना, दो आम खाते जाओ, हम पत्थर मार रहे हैं, पर वो हमको इन पेड़ों से ही कुछ अकल सीख ले, यहां के जड़ पेड़ हैं, इन्हीं से अकल सीख ले, कि वो पत्थर मार रहे हैं पर वो हमें फल दे रहा है और झुका हुआ है। सुंदरता, अगर अक्षातीत जैसा फल तुम्हें लग गया है जागृत बुद्ध का, तो किस जन्म में झुकना सीखोगे, किस जन्म के अंदर मैं खुदी को मिटाओगे, और जब तक मैं खुदी मिटती नहीं तब तक स्वामी जी ने 18,000 वाणी में एक कुर्बानी मोमनों से मांगी है कि आओ मैं मारे की, और फिर क्या कहा, मैं बिना मैं मरे नहीं। जब तक तुम अहंकार को मिटा के राजी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के उनका भाव हृदय में नहीं रखोगे जो स्वामी जी ने करके बताया, अंदर युगल स्वरूप है, अपनी मैं से तो मैं नहीं कहते कि हाँ मैं चलूंगा ना, अच्छा भाई चलो जो राजी का हुक्म होगा सो देखेंगे, मुझे वहां पहुंचा दो। सुंदर साथ दो गए, चिंतामणि जी के साथ उनके जो है साथ मिलन करा दिया। अब देखो जरा बातें होती कैसे हैं,
कहां से आए तुम,
अब किसने कहा ये, हाँ जरा बस सुनने का वो होना ना, तुरंत आपको भी पता चले कि बात कहां चली। जब उनके घर पहुंचे उन्होंने पहचान करा दी, तो चिंतामणि पूछने लगे कि महाराज कहां से आप पधारे हैं,
चर्चा करो हम तो।
स्वामी जी कहने लगे जी आपके महिमा सुन के महाराज यहाँ आए थे, हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं मिलने के लिए, पता चला आप पार ब्रह्म का ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए आपकी चर्चा सुनने के लिए हम आए हैं, ताकि विषय वही शुरू करना जिससे मेरी आत्म का कल्याण हो, मैं भव सागर से पार हो जाऊं।
तुम हमको सुनाओ।
और वो कहने लगे कि महाराज ठीक है आप कह रहे हो, मुझे लगता है आप भी कुछ ज्ञानी ध्यानी हैं। ये चिंतामणि कह रहा है, कहने लगे महाराज अगर तो सुनने आए हो तो मैं सुनाने को तैयार हूँ, और अगर आप सुनाने आए हो तो मैं सुनने को भी तैयार हूँ, अगर लेने आए हो तो मेरे पास जो कुछ है मैं वही दे सकता हूँ, और देने आए हो तो जो कुछ आपके पास है वो दीजिए, मैं लेने को भी तैयार हूँ।
जो देने आए हो तो दो,
जो देने आए हो तो दो,
देने आए हो तो,
लेने आए तो हम देते हैं।
तो नहीं हम कहे।
आप स्वामी जी कहते हैं महाराज अगर हमें कुछ आता होता तो हम चल के आपके पास आते ही थे, हमने तो आपकी महिमा सुनी है, हमें कुछ आता जाता नहीं है, संतों की कभी कभी सत्संग हो जाता है उससे कुछ ज्ञान मिलता रहता है, इस वास्ते तुम कहो हम सुने, आप कृपा करके सुनाओ, हम तो सुनने के लिए आए हैं। अक्ष अतीत राज्य महाराज युगल स्वरूप प्राण कार्य बोलते हैं, ये रहनी के वास्ते लिखी है, ये कोई कथा स्टोरी तो तमैनु की नहीं, क्योंकि ए अपनी भी तक विचार करो कि हमने रहना कैसे है दुनिया में,
कहो तो चतुर्भुज का।
अब वो कहने लगे अच्छा महाराज अगर आप मेरे ऊपर ही बात टाल रहे हैं तो मेरे पास चार शक्तियां हैं जिनकी मैं रिद्धि सिद्धि और साक्षात दर्शन करा सकता हूँ, कहो तो चतुर्भुज स्वरूप जो बैकुंठ के नाथ 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान शंख गदा चक्र पद्म धारण किए हुए उनके दर्शन करना चाहो, अभी दो मंत्र बोलूंगा वो साक्षात यहाँ खड़े हो जाएंगे, दर्शन करा सकता हूँ, अगर चतुर्भुज के दर्शन करना चाहो तो करा सकता हूँ। ये कौन कह रहा है, चिंतामणि स्वामी जी से कह रहा है,
ज्योति स्वरूप को।
और अगर उससे आगे ज्योति स्वरूप जो लोग कौन से योग साधना से आदि नयन को ज्योति स्वरूप मान करके दर्शन करते और ज्योत को ही मान लेते हैं पारब्रह्म, उनके दर्शन करना चाहो तो ज्योति स्वरूप को आदि नयन को यहाँ दर्शन करा सकता हूँ, और या पाताल में बैठे आदि नयन कमला जी के साथ शस्त्र फनों वाले नाग के ऊपर जो सिज्ज लगा के बैठे उनके दर्शन करना चाहो तो उनको बुला देता हूँ, और या सात शून्य के अंदर अनहद बाजों की जो आवाजें उठती हैं सप्त स्वरों के साथ उनको यहाँ सुनना चाहते हो तो मैं वो भी करवा सकता हूँ,
ये सब दिखावे हमें,
इतना कुछ मैं दिखा सकता हूँ, बस आगे का ज्ञान मुझे कुछ नहीं पता,
ना तो तुम हमको दिखाओ,
और इससे आगे की कोई बात तुम्हारे पास हो तो वो मुझे बताओ,
जो कुछ पाया हो तो
अगर आपने इसे ऊंचा कुछ पाया हो, चिंतामणि स्वामी जी से कह रहे हैं तो वो रास्ता हमें बताइए,
तो
स्वामी जी ने क्या कहा,
हम लेने आए बस,
महाराज आप बार बार क्यों शर्मसार कर रहे, हमें कुछ भी पता नहीं, हम तो लेने के लिए आए हैं, और ये जो चार शक्तियों का आपने वर्णन किया है मुझे तो इनका भी नहीं पता कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, जो इनमें से हमारी आत्म का कल्याण करे, हमें जन्म मरण से छुड़ा के हमारे जीव को भव सागर से पार करे, हमें तो उनका ही ज्ञान बताइए, बाकी का हमें क्या सुन के करना है,
जो कुछ तुम कहा,
जो कुछ आपने कहा
रहे तुम्हारे वचन,
आपके वचन हमने सुने अवश्य ग्रहण किए हैं,
इनका निर्णय कर दो,
इनका भी निर्णय आप करो के कौन शक्तिशाली है,
दिल करो रोशन ने,
और ताकि मेरे संशय मिट जाए,
एक कमाल की साकी पड़े।
तब जब इतना ही मान दिया तो गादी का नशा तो चढ़ना ही था, चिंतामणि सोचने लगा भाभी भाई मालूम होता भंधु भंधु है ऐसे कुछ पता ही नहीं है, कहने लगा अच्छा महाराज अगर आगे की बात ही आप सुनना चाहते हो तो फिर आओ फिर हम बता देते हैं, कबीर की भी क्या बात बताएं आपको, कबीर से भी आगे जो है जो कबीर से भी पूरा भक्त है कमाल में उसकी जो है बात आपको सुनाता हूँ, एक कबीर की साखी बोल डाली,
सब जोश में गिरी जी
कहा, सब जोश में स्वामी जी ने क्या अब जोश चढ़ा अंदर से,
तब पाया चित मरोरे,
तब उसके चित को मरोरा, तो के ये चिंतामणि ने साखी बोली जो कबीर के ही साखियों में है, कोड़ी से हीरा भया और हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है और पूरा भक्त कब, अभी इस अन्याय को स्वामी जी कैसे से, हम तो बैठ के सुन सकते हैं ना कि भागवत जो है वाणी की दाता है जन्मदाता है, हम तो सुन सकते हैं, बख्श आती है, वो झूठ नहीं सुन सकते, कुफर नहीं सुन सकते, अंदर जागृत बुद्ध का आवेश चाहती कहने बस कमे चिंता में नहीं, ध्यान से बोलना सर। अरे तू किसकी गादी पर बैठा है और तुझे उसकी शक्ति का ही नहीं पता, तुमने बोल्ड सराफों का लगा रखा है और मुझे तो तू मालूम होता है कि ठाकर 420 आदमी, तुझे कमाल का ही नहीं पता। ध्यान के साथ सुनिए, कमाल कौन था? कबीर जी की फकत एक संतान थी, ना कोई और लड़की थी ना ही कोई लड़का था, उसके लड़के का नाम कमाल है। और कमाल जब पढ़ रहा था तो उसका दोस्त आना, फ्रेंडशिप जो है वहां के राजा के लड़के के साथ राजकुमार के साथ थी, मिल के इकट्ठे स्कूल में, तो आप जानते हो कोई छोटे बड़े का भेद ही नहीं होता, इस वास्ते जो है सचेत होना। अब वो कमाल भी बड़ा हो गया और राजकुमार भी बड़ा हो गया, तो राजा के घरों में तो खाना पीना और जो ऐसा आराम होता है उसको वर्णन करने की जरूरत नहीं। जब 15-16 साल का वह लड़का हो गया तो अब राजा को चिंता हुई और वजीर को कहता है कि वजीर देखते नहीं हो राजकुमार बड़ा हो गया है, इसको अभी से घुड़सवारी और शिकार का खेलने का ढंग सिखाओ। उन्होंने कहा अच्छा हजूर, आज ही ले जाते। तैयारी हो गई, 2-4 बढ़िया घोड़े अस्तबल के तैयार हो गए, 5-6 पोशाकें चल गई, एक की बजाय 10 पोशाकें तैयार चल के होती है। राजकुमार उस पर शिकारी का भेष बना के बैठता, वजीर उसके साथ है, शिकार खिलाने वाले साथ है। अब जिस वक्त सवारी तैयार हो गई, राजकुमार कहता मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चलो पहले कबीर जी के घर, उनका जो लड़का कमाल है वो मेरा दोस्त है, उसके बिना मैं किसी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि इकट्ठे उठते थे, खाते थे, पीते थे, दोस्ताना था, इसलिए उसको कोई मान ही नहीं था कि मैं राजा हूं या वो गरीब है। आप ध्यान के साथ जब उसके घर गए तो स्कूल के लिए तो फिर भी कुछ अच्छे कपड़े कबीर अपने लड़के को देता था, अब जब खेल रहा था तो फटी सी कमीज पहन रखी थी। तुरंत राजकुमार ने छलांग मारी, आके कमाल को पकड़ा, कहने लगे ओ कमाल, या तूने कमाल ही कर रखी, ऐसे कपड़े फटे हुए कपड़े पहन रखता है तू, अरे मैं राजा का लड़का हूँ, किस लिए मेरे पिता का धन काम आएगा, तूने मुझे आज दिन तक बताया क्या नहीं। कहने लगे भाई ये बातें बताने की नहीं होती कि मेरे माँ बाप गरीब है, मैं दुनिया को ढिंढोरा पेटू कि मेरे माँ बाप गरीब है, क्या दुनिया नहीं जानती, क्या दुनिया में तू नहीं रहता कि मेरे पिता का नाम कबीर है और वो सारा दिन खद्दी बुनता है, 2 पैसे सिर्फ कमाता है, लेकिन उनका धर्म क्या है कि सबसे पहले 4 संतों को चौके में भोजन कराना, ये कबीर का प्रण था, 4 संतों को भोजन कराना, फिर 3 मेंबर घर के भी हैं और कमाई कितनी है 2 पैसे सिर्फ, only 2 पैसे, और उसके बाद फिर भाई को बचे तो कपड़ा पहनते, नहीं तो कटे फटे को टुकियां लगा ले, तो इसमें क्या बात है, परमात्मा की जो मर्जी है हम तो इसमें खुश हैं। कहने का अच्छा फिर ठहर जा, तो अपने वजीर को हुक्म दिया जाओ जैसी मेरी पोशाक ये है कई और बनी है, एक बढ़िया से बढ़िया पोशाक लेके आओ, मेरे जैसा ही दूसरा घोड़ा लेकर के आओ। मिनटों में आ गया, इधर जो है राजकुमार ने कमाल को नहलाया धुलाया तैयार किया और वैसी पोशाक बना करके दोनों एक जैसे तैयार, अब टॉपो टॉप घोड़ों पे जा रहे हैं। जैसे ही गांव से बाहर गए तो बादशाह के खजाने में धन जमा होने के वास्ते ऊंटों और घोड़ों पर लदा हुआ खुर्जियों के अंदर पैक्ड थैलों में हीरे जवाहरात जो भी उस समय के था वो लद करके आ रहा था। राजकुमार ने देखा, कहने गए थोड़े वालों ए सिपाही कौन है तुम्हारा, इधर आओ, कहाँ है तुम्हारी पहुंच बुक, लाओ मैं दस्तक करता हूँ। वजीर को कहा इसके ऊपर मोहर लगा दो कि ये 8 घोड़े 8 ऊंट जितना भी धन संपत्ति है खजाने में जमा हो गया, रसीद करके राजकुमार ने दस्तक कर दी। कह लगी ये सारे का सारा खजाना कबीर जी के आंगन में जाके डाल दो और तुम चले जाओ, बस ले गए सारा धन संपत्ति, हीरे जवाहरात पाउंड अशरफियां जो कुछ भी था कहां गिर गया, कबीर जी के आंगन में, और मां देख के खुश ताला बंद करके बैठ गई। अब लड़का कमाल और राजकुमार दोनों जंगल में जाते हैं, वजीरों के साथ खेलते रहे 2 घंटे 3 घंटे और कितना दौड़ाना था घोड़े को, थक के जब वापस आ गए, शाम को 7-8 बजे का समय होता है मेरे साथियों, राजा जो कुमार राजकुमार था वजीरों को लेकर के अपने महलों में चला गया और कमाल जो है तुरंत घोड़े से नीचे उतर करके अंदर जाता है, माँ के चरणों में प्रणाम करके चूमता है कि चलो माँ सारी उम्र की गरीबी अब कर जाएगी। अब दोनों माँ बैठा बेटा बैठ करके बने शेख चिल्ली की बातें कर, बेटा तेरे लिए अब मैं बहुत सुंदर महल बसाऊंगी, बेटा अब तो मैं किसी राजकुमारी से तेरी शादी करूं, बेटा फिर अपन 4 भैंसे भी लाएंगे, बेटा फिर अपन ये भी करेंगे। करते करते गप्पे मारते मरते 11-12 बज गए, 11-12 बजे से पहले कबीर कभी आते नहीं थे, सुबह से लेके रात के 12-12 बजे तक मेहनत करके 2 पैसे मिलते थे, उस समय ऐसा जमाना था। दरवाजा बंद। अब आकर के कबीर जी ने जब दरवाजा खटखटाया, कमाल के माताजी कबीर की पत्नी जाकर के दरवाजा खोलती है, लालटन हाथ में था, लालटन के द्वारा ही देखा कि मेरे घर में हीरे और अशरफिया द्वारा। कबीर ने तुरंत जो है अपना कदम बाहर खींच लिया के ना, कहने लगे हो कमाल की माँ ये बता मेरे कौन से पापों का फल मिल गया कि ये चंडालनी कौन जिसके लिए हम तड़पते थे, हाय रे डायमंड का सेट, हाय रे नोट, हाय रे पैसे, जिसके लिए हमारे प्राण सुंदर साथ के राज्य की वाणी लेने के बाद अटके पड़े। कबीर आगे कि हम परम धाम का दावा करने वाले आगे, अक्षर की पांच वासनों वाला आगे या कि हम आगे, हमारी तृष्णा कहां अटकी हुई है, हमारे सांस कहां अटके हुए हैं, भी तक से सीखो। श्री महामति कहे मोमनो, क्या शुक्र गरीबी किसको है, किसने की शुक्र, जिस हाल में राज्य रखे ठीक, जैसा दिखाएंगे ठीक, किसने आज दिन तक सबर से काम लिया। आप सुनो कबीर की, कहता है भाई जिस जगह माया है वहां कबीर नहीं, और जहां कबीर है वहां माया हो ही नहीं सकती, इसको बाहर निकाल। बस उस संसार का जीव लगी से मत्थे पे, तू निखत्तू मेरे पल्ले पै गया, एक तो मेरी मां बाप ने अन्ने करके मैंने चूल्हे च पा था, जे मेरे मुंडे की किस्मत ना आके तेन साड़ ला गया, रख ले जा तो कहना है घंटा दो बजे डंडा, लड़का बेचारा अंदर बैठा है देख रहा है कि माता जी गए थे, बाहर में छटपट हो रही है, शायद कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे मेरी शादी शुद्धि का, वो अपने प्रोग्राम बना रहे हैं। जब शराब के डेढ़ दो बजे का समय हुआ, दरवाजा खुला नहीं, पिताजी बाहर खड़े हैं, माँ अंदर खड़ी लड़ रही है, तब कमाल जाता है। कमाल ने जब जाके बात सुनी, कहने लगे पिताजी कोई मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मेरी सच्चा दोस्ताना है, मेरा दोस्त अगर मेरे दुख को नहीं सह सका तो इसमें बड़ी बात क्या है। कहने लगे बेटा मैं ये तो नहीं कह रहा कि तू चोरी करके लाया है या डाका डाल के लाया है, पर जहां कबीर है वहां माया नहीं होती, और जहां माया है वहां कबीर रह नहीं सकता, हमें दोनों को तू कैसे इकट्ठा कर लेगा, तुम मां बेटे को माया चाहिए रखो, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार, मुझे राजी खुशी कह के आप जाओ। तीन बजे का समय हो गया सुंदर साहब जी, तब कमाल कहता है पिताजी ये कभी नहीं कि मैं इन पैसों के बदले, इस धन के बदले अपने बाप को छोड़ दूं। तो कबीर कहते अगर मेरी जरूरत है तो वही रूखे हुए दो टुकड़े रोटी के मिलेंगे और दो पैसे कमा के लाऊंगा, इन्हें उठा करके बाहर फेंक, कहने लगा अभी फेंकता हूं। अब इसलिए वो कबीर जी अब साखी कहेंगे, कमाल उठा उठा करके बाहर जब फेंकने लगा तो ब्रह्म मुहूर्त था उस समय, लोग 8-9 बजे सोना अपनी इज्जत नहीं समझते थे, अपने को कोड़ी समझते थे कि कोड़ी 8-9 बजे उठा करते हैं, मनुष्य जो है वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता है। क्षमा करना मैं आज की बात नहीं कह रहा, 10 बजे सो के उठो, तकलीफ आपको होनी है मुझे नहीं, मनुष्य तन मिला है, भैंसों का तन नहीं मिला। हकीम ने नहीं कहा कि लोगों को दिखा हमारी फॉरवर्ड फैमिली है रात के 1 बजे क्लबों में से आ रही, इंसान आते हैं क्या, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मानवता सीखो, पशुता पश्चिम देश की छोर। सुंदर साहब होता क्या है, लोग उठ चुके थे, पानी कुओं पर भरने जा रहे थे, जब कबीर कह रहा ले लो हीरे ले लो जवाहरात लो उठा पौंडा लो अशरफियां, दुनिया हैरान होगी कि कबीर तो कहता था मैं दो पैसे कमाता हूं, ये भगत है कमबख्त है लुटेरा है, देखो भगत तो पूरा कमाल है जो धन घर से लुटा रहा है। तब वहां कबीर जी साखी कहते वाकई दुनिया वालों कोड़ी से हीरा भया, कोड़ी किसकी कीमत होती है, जो ना दीन के काम आए ना दुनिया के काम आए, वो पत्थर जैसा एक बोझ है धरती के ऊपर, उसको अपने पिता को कहा ए दुनिया वालों मेरे पिता ना दुनिया के काम आए ना दीन के काम आए, वो एक फुट्टी कोड़ी की तरह से दुनिया में मनुष्यतन लेकर के आए। उनमें से कबीर जी कहते हैं मेरा जन्म जो हुआ तो मैंने कोड़ी में से कोड़ी नहीं बना, मैं हीरे जैसा बना कि माया को छोड़ करके मैंने पार ब्रह्म की पहचान की। पर भाई वाकई तुम्हारे लिए मैं भक्त नहीं हूँ, तुम्हारे लिए पूरा भक्त कमाल है। क्योंकि अब दुनिया क्या जाने के ये कारण क्या बना है, कैसे धन बाहर फेंका जा रहा है। तो दुनिया धन को जो लेती है, आज गरीब सुंदर साथ हो कितनी कठिनाइयों से सेवा करे उसका नाम नहीं समाज में होता। और आ जाए सारी उम्र चाहे जो काम भी कहीं भी जैसा विश्वास से जो कुछ भी कर्म कुकर्म करे, पर समाज में खूब पैसे से अपना नाम ऊंचा करे, उसकी देखो कितनी देर संसार है। पर ये धोखा दुनिया को दे सकते हैं, धनी ना जा।